अध्याय चार अज्ञेय कविता में गद्य की सजगता। पहला, आधुनिकता की चुनौती। आधुनिकता की अवधारणा मूल्यबोधी होने पर भी मूलतः तो कालबोधी है, परिवर्तन का प्रकृति का सामान्य नियम है। विकास बेहतर दिशा में चलने का उपक्रम और आधुनिकता है इतिहास की गति को द्रुततर करने का सजग मानवीय प्रयास। परिवर्तन अनादिकाल से चला आ रहा है। विकास मनुष्य की सभ्यता का आरंभिक लक्षण है, जबकि आधुनिकता की प्रक्रिया स्वचेतनता के बढ़ते दबाव से जुड़ी हुई है। इसकी पृष्ठभूमि में एक ओर 20वीं शताब्दी के आरंभ में हुए फ्रायड, एडलर, यूंग के मनोविश्लेषण संबंधी अध्ययन है, तो दूसरी ओर मार्क्स लेनिन द्वारा सामाजिक आर्थिक विकास क्रम का विश्लेषण। इसी के अनुरूप पश्चिमी देशों में आधुनिकता मनोविश्लेषण और विज्ञान के विकास से जुड़ी हुई है, जबकि साम्यवादी देशों का आग्रह रहा है इतिहास की शक्तियों को समझकर उसके चक्र को द्रुततर गति से परिचालित करने पर। आधुनिकता को गतिशील करने में एक विज्ञान का आश्रय लेता है दूसरा इतिहास का। इसी स्थिति में समसामयिकता और आधुनिकता का अंतर समझा जा सकता है। समसामयिकता अनिवार्यतः कैलेंडर या पन्ना के कालक्रम से जुड़ी हुई है। इस युग के लेखक कलाकार अपने युग के संदर्भ में समसामयिक कहे जा सकते हैं। आधुनिकता, जैसा कहा गया, कालबोध के साथ साथ मूल्यबोध से जुड़ी हुई है। यहाँ कैलेंडर पत्रा के कालक्रम को सजग भाव से और प्रयत्नपूर्वक आगे बढ़ाने का उपक्रम है। इस रूप में कोई लेखक कलाकार समसामयिक तो होगा, पर आवश्यक नहीं कि आधुनिक भी हो। आधुनिक भावबोध के संक्रमण और विकास को समझने के संदर्भ में यह जानना उपयोगी होगा कि इस काल की ऐसी कौन सी विशिष्ट परिस्थितियां रही हैं जिनमें इतिहास की नई समझ का उपयोग करते हुए उसकी गति को द्रुततर करने के उपक्रम हुए और उसकी क्या परिणतियाँ हुईं। जैसे एक सीमा के बाद पर्यावरण से मनुष्य की छेड़छाड़ घातक बन सकती है, वैसे क्या इतिहास के साथ छेड़छाड़ भी कुछ खतरों को जन्म देती है। आधुनिक काल में यदि सजग भाव से इतिहास का परिचालन करने का उपक्रम है तो उसे समझने का तो और गहरा यत्न होना चाहिए। आधुनिक चिंतन में मनुष्य सारे मूल्यों का स्रोत और उपादान है, और वह स्वयं ही उसके विघटन का भी कारण है। सहस्त्राब्दों में निर्मित और विकसित मानवीय मूल्य अब विघटित होते जा रहे हैं। यह हमारी वर्तमान सभ्यता की चिंता का केंद्रीय विषय है। यूँ तो संक्रमण और मूल्यहीनता की स्थिति मानवीय इतिहास में अनेक बार आई है। संक्रमण का रोना लगभग हर युग के इतिहासकार ने रोया है, और यह मानना होगा कि अब तक के संक्रमण अपने प्रकृति में संशोधन और सुधार परक अधिक थे। इधर प्रायः द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद से तो मूल्य संबंधी मौलिक आधार ही जैसे उखड़ गए हैं। द्वितीय महायुद्ध को इस प्रसंग में तिथि जैसा मानने का कारण है। यह स्पष्ट है कि मूल्य विघटन की स्थिति को लाने में विज्ञान और प्रविधि का सबसे अधिक हाथ है। एक बार यह मान लेने पर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि द्वितीय महायुद्ध के समय संबद्ध राष्ट्रों ने जैसे भीषण दबाव में जीवन यापन किया, उसी में यह संभावना संभव था कि प्रतिद्वंदिता और आत्मरक्षा की तीव्र भावना से प्रेरित होकर वे विज्ञान और प्रविधि का इतनी तेजी से विकास कर सके। अणुबम के विकास का जो इतिहास अब हमारे सामने है, उससे स्पष्ट है कि यदि द्वितीय महायुद्ध न होता तो अणुबम और अणुविद्या का विकास कई देशों दशकों के बाद होता, शायद न भी होता, यदि होता भी तो कुछ भिन्न रूप में। इस तरह अणुशक्ति के आविष्कार से लेकर अंतरिक्ष यात्रा का आयोजन तक युद्धकालीन मनस्थिति के दबाव में अधिक हुआ है। युद्धकालीन जीवन की क्षिप्रता और गति शांतिकालीन जीवन की तुलना में कहीं अधिक होगी, और इस युद्धकाल के उखड़े हुए मूल्य विवाह, परिवार, धर्म, परंपरागत नैतिकता आदि के मौलिक संदर्भों में फिर नहीं जम सके, क्योंकि महायुद्ध तो समाप्त हो गया, पर इसके स्थान पर आसानी से समाप्त न होने वाले शीत युद्ध आरंभ हो गया। विकसित और विकासशील देश अंदर अंदर युद्ध के लिए अपने को तैयारी की हालत में रखते हैं। इस प्रकार युद्ध की मनोवृत्ति का दबाव कम नहीं हुआ, बड़ा ही है, और इस मनोवृत्ति का प्रभाव क्षेत्र फैलता जाता है। फलतः चाहे अनचाहे भारी उद्योग और प्रविधि की लपेट भी फैलती जाती है। संकटकालीन स्थिति अब सामान्य स्थिति हो गई है। प्रविधि के विकास का सीधा परिणाम यह हुआ कि गति बढ़ी है और संसार की सीमाएं संकुचित हुई हैं। इससे मनुष्य एक दूसरे के अधिकाधिक संपर्क में आया और यह मनुष्य का तेजी से बढ़ता हुआ संपर्क मूल्यहीनता की स्थिति का एक प्रधान कारण है। एक सीमा के बाद मनुष्य ही मनुष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा हो जाता है। अधिकाधिक बार संपर्क होते रहने से मनुष्य की अनुभूति शक्ति का क्षरण होता है। लोहे को लोहा ही काट देता है और अनुभूति के क्षरण का अर्थ है मानवीय सौहार्द में उत्तरोत्तर कमी तथा एक तरह की कठोरता का विकास। इसका साक्ष्य हमारा समकालीन जीवन और साहित्य दोनों प्रस्तुत करते हैं। मनुष्य का मनुष्य से संपर्क बढ़ते हुए रूप में तनाव, द्वंद्व या संघर्ष की मनस्थिति को जन्म देता है, जो कि बौद्धिक चेतना केंद्रों के परस्पर संपर्क का स्वाभाविक परिणाम है, खासतौर से आधुनिक परिग्रही समाज में। द्वितीय महायुद्ध को भी यदि फिर विभाजन रेखा माने तो उससे पूर्व भारत का औसत मनुष्य अपने समूचे जीवन काल में 100-200 व्यक्तियों से मिल पाता था, पर संचार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष साधनों की सहायता से अब उसके परिचय और भावनात्मक संशक्ति का क्षेत्र कई 100% बढ़ गया है। उन्नत देशों में तो इस परिचय और संशक्ति का विस्तार और तेजी से बढ़ा है। चेतना केंद्रों का यह तीव्र गति से बढ़ता संपर्क मानवीय संवेदनशीलता पर बहुत बड़ा दबाव हो रहा है, जिससे अनुभूति का क्षरण होता है और स्नायविक रोगों की बढ़ोतरी। कुल मिलाकर अनुभूति के क्षेत्र में सनसनी का प्रवेश तेजी से बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर बढ़ती गति ने सारे मानवीय संबंधों और प्रतिमानों को अस्थिर कर दिया है। परिवार, धर्म, प्रेम और सामाजिक आचरण की अन्य मर्यादाएं अनिश्चित हैं। यह इसलिए भी है कि जहां मनुष्य मनुष्य से टकरा रहा है, वहां अनेक राष्ट्र और जातियां, उनकी जीवन पद्धतियां और संस्कृतियां परस्पर टकरा रही हैं। इन प्रभावों, संघातों को उनकी निरंतर बढ़ती हुई संख्या में आत्मसात करना, समरस बनाना एक सीमा के बाद संभव नहीं लगता। फलतः संसार के विभिन्न क्षेत्रों के बीच परस्पर के संपर्क से जितनी क्षमता बढ़ती है, उससे कहीं अधिक संघर्ष बढ़ता है। ऐसी स्थिति में अनुभूति का क्षरण मानव जीवन में अर्थ की विकसन प्रक्रिया को बाधित करता है। इसका अंततः परिणाम है अनर्थक, मूल्यहीन, अर्थहीन जीवन की स्थिति। समकालीन साहित्य का नवीनतम अंश जहाँ तक इन स्थितियों का अंकन करता है, वह एक मायने में सही और प्रामाणिक है। उसका मूल विद्रोह परंपरागत जीवन की अर्थहीनता को लेकर है, जो समझ में आता है। इस संदर्भ में किया गया अनेक सामाजिक स्थितियों का नितांत उग्रा चित्रण उपलक्षण मात्र है, पर इस समूचे बिखराव को नए सिरे से सजाना और उसमें सार्थकता के तत्व खोजना, यही तो मनुष्य का लक्षण और दायित्व है। यह ठीक है कि जीवन में परंपरागत ढंग से प्रतिष्ठित अर्थ आज बेमानी, कृत्रिम और उबकाई लाने वाला लग सकता है। तब उचित होगा कि पुराने अर्थ को निरस्त करके हम नए अर्थ का सृजन करें, क्योंकि जीवन में अर्थ को नकार कर तो हम मानवीय वैशिष्ट को ही नकारते हैं और मनुष्य को सामान्य पशु के धरातल पर उतार देते हैं। इस दृष्टि से समकालीन साहित्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती अर्थहीन लगने वाले मानव जीवन में नए अर्थ संदर्भों के निर्माण की है। ये अर्थ संदर्भ सर्वथा नए हो, परंपरागत मान्यताओं से बिल्कुल अलग हो, इसमें ऐतराज नहीं हो सकता, पर जीवन के लिए और साहित्य के लिए या कि समस्त सृजन के लिए ही सृष्टि प्रक्रिया जीवधारियों की है, सर्जन केवल मानवीय वैशिष्ट है। अर्थ संदर्भ हो यह मौलिक अनिवार्यता है। इस प्रकार अर्थहीनता मानवीय नियति नहीं, वरन अर्थ का सृजन मानवीय नियति है। जैविक धरातल की सृष्टि प्राणी मात्र में समान है। इस जैविक सृष्टि के अंतर्गत संवेदनात्मक अर्थ का सृजन और संचरण मानवीय जीवन की विशिष्टता, इसलिए चरम मूल्य और दायित्व है। साहित्य इस सार्थकता की खोज का प्रमुख माध्यम रहा है और अब भी है, क्योंकि धर्म, दर्शन अथवा विज्ञान की तुलना में उसकी प्रकृति और उसकी भाषा अधिक संपृक्त, अधिक मानवीय और इसलिए अधिक सृजनात्मक है। साहित्य इस स्तर पर अर्थ से साक्षात्कार का माध्यम नहीं वरन अर्थ से साक्षात्कार की प्रक्रिया है। अपने संश्लिष्ट गठन के माध्यम से भाषिक अर्थों की टकराहट और उससे उत्पन्न वैविध्य और विस्तार से जीवन में सार्थकता की अनुभूति निष्पन्न कराते चलना साहित्य का मुख्य दायित्व है। अपने इस दायित्व को छोड़कर साहित्य साहित्य नहीं रह जाता, भले वह सामाजिक या राजनीतिक आंदोलन हो जाए या कि दिलचस्प किस्सा गोई बन जाए या संप्रेषण की शक्ति से घोषित रूप से विरहित रूपाकार मात्र रह जाए। आधुनिक सभ्यता का गठन अधिकाधिक यंत्र को केंद्र में रखकर हो रहा है। यंत्र में आवृत्ति और प्रसार की क्षमता है, संप्रेषण की नहीं। इसलिए यंत्र की सहायता से अधिकाधिक मनुष्य एक दूसरे के संपर्क में तो आ रहे हैं पर उनमें पारस्परिक संप्रेषण और उससे उत्पन्न समझदारी का अभाव होता जा रहा है। यंत्र से गति बढ़ी है पर प्रायः अनुभावन शक्ति की कीमत पर। इस प्रसंग में तर्क दिया जा सकता है कि मानवता के इतिहास में अभी तक गति तो उत्तरोत्तर बढ़ती ही रही है और इसके साथ क्रमशः समायोजन भी किया जा रहा है, तब फिर कोई कारण नहीं कि यह समायोजन भविष्य में भी संभव न हो। यदि हम इस स्थिति पर विचार करें तो पाते हैं कि गति ज्यों ज्यों बढ़ती जाती है और वह उत्तरोत्तर तेजी से बढ़ती ही जाती है, त्यों त्यों मनुष्य की अनुभावन क्षमता छीजती जाती है, क्योंकि स्मरण शक्ति की ही तरह अनुभावन शक्ति की भी अंततः एक सीमा है। स्मरण शक्ति सक्रिय रहती है विस्मरण के सहारे। नई घटनाओं को याद रखने के लिए हम पुरानों को भूल जाते हैं, पर अनुभव तो क्रमशः व्यक्तित्व का अंग बन जाता है, इसे काट कर निकाला नहीं जा सकता। मानवीय अनुभवों को सजो कर रखने के लिए अंतराल चाहिए, जैसे आधुनिक महानगरों की आबादी क्षेत्रों के बीच हरित पट्टियां छोड़ दी जाती हैं। ये अंतराल कैसे बने और बने रहे, यही शताब्दी के लिए और आगे के लिए भी एक विषम समस्या है। कला रचना को इस अंतराल में उगना है और मनुष्य का मनुष्य से संपर्क एक सीमा के बाद बचाए रखना है, या कि अपने माध्यम से उन्हें जोड़ना है। भारत औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है और इस स्थिति की वजह से हमें इस बात की छूट और सुविधा है कि हम उन गलतियों से बच सकते हैं जो यूरोप ने अपने विकास के दौरान की है। धार्मिक संस्कृति का कभी हमने विकास किया था और अब वैज्ञानिक संस्कृति के परिष्कार का दायित्व हमारे ऊपर है। यह हमारे वश में है और करणीय है, पर इसके लिए हमें इतिहास के दबाव को समझना होगा और उसके प्रति सही प्रतिक्रिया करनी होगी। हमें इस रूप में विकास करना है जिससे मनुष्य की अनुभूति और उसके व्यक्तित्व का क्षरण न हो। इसके लिए खतरे कई तरह के हैं। पहला खतरा यंत्र या प्रविधि सभ्यता का है, जिसकी चर्चा हमने अभी की है और जिसका एक मूर्त डरावना रूप आल्डस हक्सले की प्रसिद्ध कथाकृति द ब्रेवन्यू वर्ल्ड में अंकित हुआ है। एक दूसरा खतरा राजनीतिक स्तर पर सर्वसत्तावादी पद्धति का है, जिसका चित्रण अपेक्षा मनोरंजक ढंग से जॉर्ज ऑरवेल ने अन्योक्ति शैली में एनिमल फॉर्म में किया है। इस व्यंग कथा में एक ऐसे समाज का अंकन है जिसमें सब लोग बराबर हैं और सबकी तुलना में कुछ लोग अधिक बराबर हैं। अधिक बराबरी का यह मुहावरा अपने में जितना अर्थमान है उतना ही तीखा भी। इन्हीं से संबंध और खतरे हैं प्रविधि सभ्यता में अंतर्निहित गति के। और सबसे बड़ी बात यह कि मनुष्य को मनुष्य के खतरे से बचाना है। इस सब का उपाय एक ही है, मनुष्य प्रकृति और यंत्र के बीच उचित अनुपात विकसित करना। मनुष्य का मनुष्य प्रकृति और यंत्र से सही अनुपात में संबंध हो, यही काम में है। मनुष्य न तो यंत्र से चरित हो और न मनुष्य से ही। नए समाज और संसार की यही केंद्रीय समस्या है। इसे सुलझाने में साहित्य का गुणात्मक योग होना चाहिए। 2. अज्ञेय का कृतित्व। आधुनिक साहित्य में मानवीय व्यक्तित्व और उसकी सृजनात्मकता के सबसे गहरी और सार्थक चिंता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के कृतित्व में मिलती है। समकालीन जीवन के जिन खतरों की ओर अभी संकेत किया गया, उनसे उबरने के लिए मनुष्य के सृजनात्मक व्यक्तित्व को सुरक्षित रखते हुए विकसित करना पुराने शब्दावली में आधुनिक जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। सृजनात्मक व्यक्तित्व मूलतः स्वाधीन होगा और स्वाधीन होकर ही दायित्व का अनुभव किया जा सकता है। इसीलिए महायुद्ध में फासिस्टों के विरुद्ध न्याय के पक्ष का समर्थन करने में दायित्व स्वीकार के लिए गांधी ने भारतीय स्वाधीनता को पहली शर्त माना था। अज्ञेय ने अपने कृतित्व में बुनियादी तौर पर मानव व्यक्तित्व की स्वाधीनता, सृजनात्मकता और दायित्व को सूक्ष्म और प्रभावी रूप में अंकित किया है। उनके काव्य, कथा साहित्य, यात्रा वृत्त, समीक्षा में यही मौलिक दृष्टि सर्वत्र परिव्याप्त है। यंत्र में आवृत्ति और प्रसार की क्षमता है, पर सृजन की शक्ति नहीं। सृजन व्यक्तित्व के वैशिष्ट में ही संभव है। यह अनुभव अद्वितीय, जो केवल मैंने जिया, सब तुम्हें दिया, भीतर जागा दाता। अनुभव अद्वितीय संभव हो पाता है क्योंकि अज्ञेय के अनुसार ईश्वर ने मानव के रूप में अपनी प्रतिमा का निर्माण किया। कुशल शिल्पी होने के नाते उसने प्रत्येक प्रतिमा भिन्न और अद्वितीय बनाई। भिन्न होने के कारण प्रतिमाएं परस्पर प्रेम कर सकें। एनोटेड कामापन आत्मनिपद एकांत साक्षात्कार और प्रेम तथा उसकी वेदना में जैविक सृष्टि तथा कलात्मक सर्जन दोनों की प्रक्रिया गतिशील होती है। अज्ञेय की पंक्तियां हैं, एक क्षण भर और लंबे सर्जन के क्षण कभी भी हो नहीं सकते। बोध स्वाति की भले हो, वेदती है मर्म सीपी का उसी निर्मम त्वरा से, वज्र जिससे फोड़ता चट्टान को। भले ही फिर व्यथा के तम में बरस पर बरस बीते, एक मुक्ता रूप को पकते सजना के क्षण। इस तरह अनुभव की अद्वितीयता, व्यक्तित्व का वैशिष्ट्य और सृजनात्मक क्षमता मानवीय अस्तित्व और इसकी सार्थकता के यही मूल उपादान है। बड़े रचनाकार की एक पहचान इस बात से होती है कि उसने अपने युग जीवन की केंद्रीय समस्या को कितनी दूर तक पहचाना है। और आलोचक कृतकार्य तभी है जबकि वह रचनाकार के स्मृदान पर उंगली रख सके। प्रसाद के सामने समस्या थी युद्धग्रस्त संस्कृति के दौर में अति भौतिकता, अति बौद्धिकता तथा अति वैज्ञानिकता की, जिसे उन्होंने कामायनी के विस्तृत फलक पर तथा कुछ अन्य पुष्ट रचनाओं में अंकित किया है। निराला का संदर्भ राष्ट्रीय अधिक था। शताब्दियों से पराधीन तथा पिछड़े भारतीय जन की टूटती अस्मिता को उन्होंने समझा तथा एक नई शक्ति और सौंदर्य तथा जीवनोल्लास से उसे पुनः संपन्न किया। राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास तथा अनेक गीत और स्फुट कविताएं उनके इस कविकर्म का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। अज्ञेय की दृष्टि में यंत्र और सर्वसत्तावादी पद्धति के आतंक में फंसे मानवीय व्यक्तित्व को सृजनात्मकता की दिशा में गतिशील करना उनके लिए प्रमुख कवि दायित्व था। उनकी समझ में राजनीति और प्रविधि की वर्तमान साठगांठ आधुनिक मानव समाज के लिए सबसे बड़ी समस्या है। व्यक्तित्व की स्वाधीनता और सृजनशीलता की सुरक्षा इस कवि दृष्टि के केंद्र में है और उनका काव्य इस दौर में इस वृत्त को वस्तु को लेकर सक्रिय होता है। कवि के अनुसार समकालीन परिदृश्य पर मृत्यु के आधुनिक अस्तित्ववादी आतंक और तज्जन्य अनर्थकता बोध से सृजनात्मक होकर ही उभरा जा सकता है। अज्ञेय की कृतित्व में यह आधारभूत वस्तु अपने विभिन्न पक्षों और संदर्भों में अंकित हुई है। विडंबना यह है कि मृत्यु के अस्तित्ववादी आतंक के समक्ष भारतीय जीवन प्रियता की मूल वस्तु को प्रतिपादित करने के बावजूद अज्ञेय को समकालीन समीक्षा में आंख मूंद कर अस्तित्ववादी घोषित किया जाता रहा है। कुछ वैसे ही जैसे छायावाद के आरंभिक दिनों में उसे 19वीं सदी के अंग्रेजी रोमांटिक काव्य की अनुकृति समझा जाता था। यह सही है कि अस्तित्ववादी चिंतन से अज्ञेय ने कुछ बौद्धिक उत्तेजना पाई हो, पर अपने उत्तरकालीन कृतित्व में लेखक का यत्न यही रहा है कि भारतीय परिस्थितियों में अस्तित्ववाद से भिन्न और अधिक संगत दृष्टि विकसित की जाए। आंगन के पारद्वार संकलन की कविताएं अपने अपने अजनबी शीर्षक, उपन्यास तथा एक बूंद सहसा उछली शीर्षक, यात्रा वृत्त 1960-1961 में प्रकाशित, इन तीनों कृतियों में माध्यमगत भिन्नता के बावजूद जीवन प्रियता के मूल वस्तु अभिव्यक्त हुई है और तीनों रचनाओं में आस्था आस्तिकता का एक सर्वथा नया स्तर उभरा है। यहाँ ईश्वर का भी साक्षात्कार सर्जन के रूप में होता है। अपने अपने अजनबी में शील माँ की मृत्यु होने पर यूके सोचती है नोटोट कामा, ईश्वर भी शायद स्वेच्छाचारी नहीं है, उसे भी सृष्टि करनी ही है क्योंकि उन्माद से बचने के लिए सृजन अनिवार्य है, वह सृष्टि नहीं करेगा तो पागल हो जाएगा नोटोट कामा बंद, उन्माद से बचने के लिए सृजन अनिवार्य है। यह महत्वपूर्ण उपपत्ति रचना के केंद्र में है। अज्ञेय के इस चिंतन में जीवन प्रियता के भारतीय आधार को ईसाई आस्था विशेषतः यूरोप के पियर कबीर मठ की प्रेरणा और जापान की जैन पद्धति ने भी किसी सीमा तक समृद्ध किया है और बाह्य प्रभावों को रचनात्मक भाव से आत्मसात करने के लिए तो लेखक बराबर प्रस्तुत रहा है। हरियो करुणा प्रभावमय की भूमिका में उसने कहा है नोटेड कामा, प्रस्तुत संग्रह में अनुवादों को छोड़कर अन्य कविताओं में भी पूर्व के प्रभाव मिलेंगे, लेखक सभी का स्वीकारी है। बंद घर में प्रकाश पूर्व या पश्चिम या किसी भी निश्चित दिशा से आता है और खुले आकाश में वह सभी ओर से समाया रहता है, इसी में उसका आकाशत्व है नोटेड कामा बंद। ऐसे संश्लिष्ट व्यक्तित्व से अज्ञेय ने पश्चिमी मृत्यु के आतंक को भारतीय जीवन प्रियता और आस्था के सहारे अतिक्रमित करना चाहा है, इससे उनके कृतित्व का महत्वाकांक्षी रूप ही प्रमाणित होता है जिसने आधुनिक संदर्भों में भारतीय रचना परंपरा को समृद्ध किया है। सृजन के इस रहस्य की आत्मदान के रूप में व्याख्या रचनाकार ने आंगन के पार द्वार में संकलित लंबी कविता असाध्य वीड़ा में की है, जो अपने गठन में निराला के राम को शक्ति पूजा का स्मरण दिलाती है। दोनों कविताओं में शक्ति और सृजन को अंतर और बाह्य की टकराहट में देखने का यत्न किया गया है। शक्ति पूजा के अंत में है, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन, और असाध्य वीड़ा को साधने वाला किश कम्बल अंत में कहता है, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, वीड़ा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था, सुना अपने जो वह मेरा नहीं न वीड़ा का था, वह तो सब कुछ की तत्ता थी। अपने और सब कुछ की तत्ता का यह अद्वैत निराला और अज्ञेय को गहरे संवेदनात्मक स्तर पर जोड़ता है। आत्मदान के माध्यम से शक्ति पूजा के राम शक्ति साधना करते हैं और आत्मदान के ही माध्यम से असाध्य वीड़ा का कलावंत वीड़ा को साधता है। यही शक्ति और सृजन के रहस्य का साक्षात्कार है। निराला ने अपने लिए कथानक बंगाल में प्रचलित राम कथा से चुना, अज्ञेय ने जापानी लोक कथा से। अलग अलग देश काल में ढली मूर्तियों को इन कलाकारों ने सहज पत्थर मानकर उसके खंडों से फिर नई रचना की। अज्ञेय ने अपना काव्य जीवन आरंभ किया गैर रोमांटिक रचना संभावनाओं की तलाश से, भावात्मक अतिरंजना को परे करके सहज सामान्य मनुष्य जीवन में से उन्होंने कविता की रचना करनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक नया प्रयोग किया, गद्य या गद्य के आसपास की भाषा में कविता रचने का, क्रमशः तुक छंद और काव्य लय को छोड़कर। हिंदी कविता के इतिहास में अतुकांत रचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल प्रसाद ने की थी। मुक्त छंद का आरंभ निराला ने किया और इसी क्रम में परंपरागत काव्य लय को छोड़कर गद्य भाषा में कविता रचने का उपक्रम किया अज्ञेय ने, जिसे फिर आगे विकसित किया शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय, लक्ष्मीकांत वर्मा, विपिन अग्रवाल जैसे नई कविता के कवियों द्वारा किया गया। आधुनिक काल में यूं कविता के गैर जरूरी उपकरण एक एक करके छोड़े जाते रहे और कविता व्यापकतर सामाजिक अनुभवों और बोलचाल से अभिन्न होकर अपने विधान में उत्तरोत्तर स्वायत्त होती गई। अतिरिक्त उपकरणों की अपेक्षा उसे नहीं रह गई जिस स्थिति पर टिप्पणी करते हुए छायावाद के संपन्न होते समय 1938 में सुमित्रानंदन पंत ने मार्मिक व्याख्या की थी, खुल गए छंद के बंद, प्रास के रजत पाश, अब गीत मुक्त और युग वाणी बहती आयास नवदृष्टि। समकालीन कविता में छंद की स्थिति और गद्य के प्रयोग पर अज्ञेय के विचार कई प्रसंगों में मिलते हैं। इस विषय पर आयोजित एक परिसंवाद और उसमें पढ़े गए निबंधों का संग्रह करते हुए उन्होंने समापन की दृष्टि से अपने कई वक्तव्यों को जोड़कर यहाँ उन्हें एक नए आलेख के रूप में प्रस्तुत किया। यों इस प्रसंग में समकालीन कविता में छंद के अंतर्गत उनकी नवीनतम वैचारिक स्थिति समझी जा सकती है। अपने आलेख के दूसरे खंड में वे कहते हैं, सिंगल एनोटेड कामा, गद्य की एक लय होती है, यह मान लेने में तो मुझे कठिनाई नहीं है, लेकिन गद्य का एक छंद होता है, यह मैं बिना पारिभाषिक व्याख्या के स्वीकार नहीं करूँगा। छंद की चर्चा में प्रायः उन चीज़ों का उल्लेख होता है जिन्हें हमने अर्थात समकालीन कवियों ने छोड़ दिया। ये चीज़ें पहले छंद का अंग मानी जाती थी। एक एक करके हम पहचानते गए कि इसके बिना भी हमारा काम चलता है, लेकिन लय पर आकर हम लोग अटक गए। हमने माना कि लय के बिना काम नहीं चलता, अर्थात अगर कविता है तो लय है, अगर लय नहीं है तो काव्य और गद्य में भेद का आधार नहीं रहता। यह नोट कहाँ पर इस विवेचन से अज्ञे की निम्नलिखित मान्यताएँ स्पष्ट होती हैं। पहला, कविता और गद्य के बीच अंतर होता है। दूसरा, लय कविता के लिए अनिवार्य तत्व है। तीसरा, गद्य की अपनी एक लय होती है। इन मान्यताओं को एक दूसरे से जोड़ने पर कवि की यह दृष्टि उभरती है कि नई कविता के लिए गद्य की अपनी सामान्य लय से काम चलता है, जहां पहुंचकर गद्य और कविता के बीच दिखाई पड़ने वाला अंतर कम से कम रह जाता है, जबकि गुणात्मक अंतर अत्यंत प्रभावी हो जाता है। कम से कम लय को स्वीकार करके कवि भाषा की अपनी सृजन क्षमता पर ही निर्भर होता है, अन्य उपकरण तो उसने पहले ही छोड़ चुके होते हैं। अज्ञेय और परवर्ती कविता में यह भाषा रचना के अधिकाधिक केंद्र में हो जाती है। भाषा का यह रूप स्वभावतः बोलचाल का है, जिसके लिए कवि के अभीष्ट पाठक श्रोता के अत्यंत परिचित हैं। भाषा के इस रिश्ते से कवि सबको बांधना चाहता है। आधुनिक काल के आरंभ से कवि का आग्रह उत्तरोत्तर बढ़ता गया है कि रचना की भाषा बोलचाल से दूर न हो, बोलचाल ही हो। मुख्यतः इस बल के कारण उसने तुक छंद लय का क्रमशः परित्याग किया है, जिससे उसकी इस केंद्रीय प्रतिज्ञा के निर्वाह में रचना की अपेक्षा बाहरी तत्व बाधक न हो। बल अब बात के स्वयं बोलने पर है, बात बोलेगी हम नहीं। बोलचाल का विश्लेषण करते हुए अज्ञेय उसके कई नए पक्षों की ओर संकेत करते हैं। छंदबोध आधुनिक स्थितियां के अंतर्गत कहते हैं, सिंगल एनोटेड कामा, बोलचाल की भाषा का आधार लेते हुए हम लोगों ने स्वभावतः फलाघात या स्वराघात का महत्व पहचाना, जो कि लय का एक आधारभूत तत्व है। इससे पहले स्वर अथवा फलाघात की ऐसी चेतना नहीं थी, न शास्त्र में उसका विचार हुआ था। यहाँ अच्छा होता यदि अज्ञेय स्वराघात और फलाघात में भेद करते। स्वराघात संगीत के निकट ले जाता है, जबकि फलाघात गद्य के। भोजपुरी बोली में स्वराघात की प्रधानता है, बांग्ला भाषा में फलाघात की। स्वराघात भाषिक विकास के संदर्भ में पिछड़ेपन का लक्षण माना जाता है, जो हिंदी क्षेत्र की किन्नी किन्नी बोलियों में अवशिष्ट है। आधुनिक उर्दू के प्रसिद्ध शायर रघुपति शाह फिराक गोरखपुरी भोजपुरी बोलने वालों के लिए कहते थे कि वे बोलते नहीं, गाते हैं। फलाघात आधुनिक गद्य और वक्तृत्वता का वैशिष्ट है। परिनिष्ठित हिंदी में स्वराघात का नहीं फलाघात का प्रयोग होता है। अपने प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी भाषा के इतिहास के अंतर्गत हिंदी में स्वराघात प्रकरण के अंतर्गत धीरेन्द्र वर्मा लिखते हैं कि सिंगल एनोटेड कामा, वैदिक भाषा के समान हिंदी में गीतात्मक स्वराघात शब्दों में नहीं पाया जाता। हिंदी में बलात्मक स्वराघात अवश्य पाया जाता है, किंतु वह अंग्रेजी के इस प्रकार के स्वराघात के सादृश्य प्रत्येक शब्द में निश्चित नहीं है। हिंदी के कुछ मात्रिक और वर्णिक छंदों का मूलाधार स्वरों की संख्या या मात्राकाल न होकर वास्तव में बलात्मक स्वराघात ही है। उदाहरण के लिए सवैया छंद में गणों का क्रम तथा वर्ण संख्या बदी हुई है। प्रत्येक पाद की वर्ण संख्या में तो कोई गड़बड़ नहीं होती, किंतु गणों के अंदर वास्तव में स्वर की ह्रस्व दीर्घ मात्राओं का ध्यान नहीं रखा जाता। जैसे अवधेश के द्वारे सकार गई सूत गोंद कय भूपली लय निकसे, इस पाद में के रे रे कय मात्रा के हिसाब से दीर्घ है, किंतु छंद की दृष्टि से इन्हें ह्रस्व मानना पड़ता है। वास्तव में इस तवैया के अंदर संस्कृत के समान गण का क्रम न होकर प्रत्येक दो वर्ण के बाद बलात्मक स्वराघात है। यहाँ धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी छंद विधान की विशेषता दर्शाने के लिए सवैया छंद का उदाहरण बड़ा उपयुक्त चुना है। इस माने में कि सवैया में संस्कृत के वर्णक्रम का कठोर गणित और हिंदी के मात्रिक छंद की उन्मुक्तता का सहज संयोग होता है। और इस संयोग में हिंदी छंद की अपनी लय का विकास होता है। जहाँ हिंदी शब्द के अपने बलात्मक स्वराघात का उपयोग कुछ कुछ संगीतात्मक स्वराघात के हित में होता दिखता है। हिंदी शब्दों के इस बलात्मक स्वराघात का नए ढंग से प्रयोग अज्ञेय ने कविता में गद्य की लय बनाने के लिए किया, जो एक प्रकार से बलात्मक स्वराघात का सही उपयोग है। उदाहरण के लिए उनकी संक्षिप्त कविता एक बूंद सहसा उछली ली जा सकती है, जहाँ ऊर्ध्व वृत्त में सौंदर्य के साक्षात्कार का अंकन हुआ है। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंगी गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। मुझको दिख गया हर आलोक छुआ अपनापन है उन मोचन नश्वरता के दाग से। स्थलांकित अक्षरों पर का वलात्मक स्वराघात गद्य के मिजाज की तरह चलता है और इच्छित स्थान पर श्रोता का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता है, जो कि बलाघात का एक प्रकार से समान उद्देश्य कहा जा सकता है। सहसा और उछली के बीच का वाक्य भंग भी अपने ढंग से वही काम करता है। यों बलाघात एक ओर पाठक या श्रोता को धक्का सा देता है और दूसरी ओर धक्के से के इस क्रम को लय में ढालता है। इन कुछ कुछ विरोधी प्रकारों को अज्ञेय ने अपनी नई संवेदना के साथ काव्य भाषा में साधा है। मानवीय व्यक्तित्व की व्याख्या में अज्ञेय ने भाषा को अनिवार्य तत्व माना है। भाषा उनके लिए माध्यम नहीं, अनुभूति है। सृजनात्मकता की समस्या से सतत जूझने वाले रचनाकार के लिए यह उचित है कि वह भाषिक सर्जन की क्षमता को गहरे ढंग से समझे। अज्ञेय की कई प्रसिद्ध कविताओं में भाषा और अनुभूति के अद्वैत को व्याख्यात करने का यत्न हुआ है। यह सृजन क्रिया को आधुनिक सचेतन भाव से समझने का उपक्रम है। कलगी बाजरे की शब्द और सत्य जितना तुम्हारा सच है जैसी कविताओं की मूल वस्तु सर्जन और भाषा का अंतर संबंध है। अज्ञेय ने एक जगह लिखा है, सिंगल इंटेड कामा, मैं उन व्यक्तियों में से हूँ और ऐसे व्यक्तियों की संख्या शायद दिन प्रतिदिन घटती जा रही है जो भाषा का सम्मान करते हैं और अच्छी भाषा को अपने आप में एक सिद्धि मानते हैं। इनडोट काम पर आत्मनिपद पृष्ठ संख्या 240। यहाँ अच्छी भाषा का अलंकृत या चमकदार भाषा नहीं है, वरन अच्छी भाषा की अच्छाई इसी में है कि वह भाषा और अनुभूति के अद्वैत को स्थापित करे। अज्ञेय की अपनी काव्य भाषा उनकी इस मान्यता का समर्थन करती है। भाषा के अनेक वंगमाओं को निखारते निखारते उन्होंने भाषा का सबसे प्रभावी रूप मौन के स्तर पर अनुभव किया है, पर इस मौन से शैथिल्य नहीं तनाव व्यंजित होता है, ऐसा तनाव जो कलाकृति का आधार है। तू काव्य सदा वेष्ठित यथार्थ चिरतनित भारहीन गुरु अव्यय, तू छलता है पर हर छल में तू और विशद अभ्रांत अनूठा होता जाता है। चक्रांशिला, यह काव्य द्वारा छला जाना संभव हो पाता है क्योंकि वह सदा वेष्ठित चिरतनित है और रचना का यह तनाव भाषिक द्वंद्व की विकासमान अर्थ प्रक्रिया से बनता है। इसलिए कवि के अनुसार मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो, जितना तुम्हारा सच है। सौंदर्य के संदर्भ में यह मौन मित कथन है, कहने और कहने के बीच अनकहना है तथा और गहरे स्तर पर आत्मदान का भाव है, जहाँ बोलना मानो आक्रमण है, मौन ही अपने को दे देना है। समकालीन समीक्षा की यह एक विडंबना है कि आत्मदान के लिए प्रतिश्रुति कवि अज्ञेय को व्यक्तिवादी कहा जाता रहा। समीक्षा के इस रूप में व्यक्ति और व्यक्तित्व के बीच विवेक नहीं किया गया। अज्ञेय की कृतित्व का वैशिष्ट व्यक्तित्व और भाषा के गहरे आयाम को समरस करने में रहा है, कविता और कथा साहित्य दोनों में। मानव की सृजनात्मक क्षमता को केंद्रीय वस्तु मानने के कारण अज्ञेय की कविताओं में जगह जगह रचना प्रक्रिया की व्याख्या होती है। बात और कहने वाले कवि के बीच का निरंतर चलने वाला तनाव गहरे स्तर पर बच रही तो जो बात में अनुभूत होता है, जहाँ एक प्रकार से कवि की काव्य यात्रा का मध्य बिंदु कहा जा सकता है। बात है चुकती रहेगी एक दिन चुक जाएगी ही बात, अब चुक चले तब उस बिंदु पर जो मैं बचूं, मैं बचूंगा ही उसको मैं कहूं, इस मोह में अब और कब तक रहूं। तीसरा, उत्तर काव्य। असाध्य पीड़ा के सधने और संपन्न होने पर अज्ञेय की रचना प्रक्रिया का एक दौर पूरा हुआ दिखता है। यह आकस्मिक नहीं कि अपने अगले संकलन कितने नावों में कितनी बार में वे जिज्ञासा करते हैं कि बात या कवि में से किसे पहले चुकना है। बात है चुकती रहेगी, एक दिन चुक जाएगी ही बात। अब चुक चले तब उस बिंदु पर जो मैं बचूं, मैं बचूंगा ही उसको मैं कहूं। इस मोह में अब और कब तक रहूं, चुक रहा हूं मैं स्वयं अब चुक चलूं तब भी बचे रहे जो बात, बात ही तो रहेगी उसी को कहूं। यह संभावना या नियति कवि की सहूं। रचना प्रक्रिया के अंतर्गत रचना और रचनाकार की कश्मकश का ऐसा सूक्ष्म और बेलाग अंकन शायद ही कहीं मिले। अपने काव्य यात्रा का उत्तर पक्ष आरंभ करते समय इस समस्या से एक बार फिर जूझना कवि की आधुनिक आत्मसजगता का परिचायक है। जो रचना प्रक्रिया पर अज्ञेय की और परवर्ती कवियों की भी कुछ अच्छी कविताएं बनी हैं, पर बात और कवि का ऐसा निचाट आमना सामना गहरी क्रिया प्रतिक्रिया उत्तर अज्ञेय में ही संभव है, जहां आंदोलन कुछ स्थिर आया है, जिज्ञासाएं कुछ और गहरी हुई हैं। कितनी नावों में कितनी बार पूर्व तथा उत्तर अज्ञेय का संधि क्षेत्र है। प्रायः 20 वर्षों का रचना काल 1967 से 1986 ईस्वी, जिसे अज्ञेय का उत्तर काव्य कहा जा रहा है, पुराने को पका रहा है और अपेक्षाकृत कुछ कम नए प्रयोगों में संलग्न है। तत्सम से तद्भव होने की जो प्रक्रिया अज्ञेय में आरंभ हुई थी अब देशीपन की ओर बढ़ गई है, जो एक प्रकार से अन्वेषी काव्य यात्रा की स्वाभाविक परिणति कही जा सकती है। कुछ ऐसा ही विकास क्रम निराला के यहाँ देखने को मिलता है। अनामिका, परिमल और गीतिकार से लेकर तुलसीदास तक तत्सम प्रेता का दौर है। फिर आता है तद्भव प्रबल कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला और नए पत्ते में। अंत में आते हैं अर्चना, आराधना और गीत गुंज के गीत, जहाँ आग्रह किसी और नहीं एक सहज देसीपन का आत्मविश्वास है। दोनों कवियों की रचना प्रक्रिया और निष्पत्ति के अपने अंतर हैं वह अलग बात है। इस विकास प्रक्रिया में प्रेम की कविता कुछ फीकी या ऊनी पड़ती है, या कहना चाहिए कि अब पहले जैसी प्रेम कविता नहीं लिखी जा सकती। निराला प्रेम से भक्ति की भूमिका में उतरते हैं, जो अज्ञेय के लिए सुलभ नहीं। तब ये कुछ दार्शनिक प्रश्नों में डूबते हैं, कहीं कहीं कुछ अध्यात्म की झलक भी आ जाती है। देशी भाषा में दर्शन की बात के लिए अलग ठाट अपेक्षित है। दूसरी ओर इस विधान में देश की बात सहज ढंग से उभरती है। उत्तर अज्ञेय में ये दो नई प्रवृत्तियां विशेष रूप से सक्रिय होती हैं। दर्शन और देश के अतिरिक्त देश दर्शन के विविध रूप पहले से आते दिखते हैं। उत्तर अज्ञेय के इस मुख्य रचना संसार में देशीपन से अभिप्राय महज देशज शब्दावली से नहीं है। यहाँ देशीपन कवि के समूचे दृष्टिकोण में निहित है, जो शब्द समूह, विषय वस्तु और उसकी बुनियादी सहानुभूति में प्रतिफलित होता है। नदी की बांक पर छाया की एक छोटी कविता है पंडित जी। अरे भैया, पंडित जी ने पोथी बंद कर दी है, पंडित जी ने चश्मा उतार लिया है, पंडित जी ने आंखें मूंद ली हैं, पंडित जी चुप से हो गए हैं। भैया, इस समय पंडित जी फकत आदमी हैं। यहाँ पंडित जी शब्द प्रयोग के उच्चारण रूप से लेकर कविता में अंतर्निहित भावबोध और दार्शनिक स्तर के सहज कौतूहल और कौतुक में भी आम आदमी का चरित्र उभरता दिखता है। तब समझ में आता है कि अज्ञेय के उत्तर काव्य में फकत आदमी का चित्रण फकत भाषा में करने का कैसा सघन प्रयास हुआ है। यहाँ अज्ञेय ने पोथी बंद कर दी है, चश्मा उतार लिया है, आंखें मूंद ली हैं, वे चुप से हो गए हैं और इस समय फकत आदमी है, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। संरचना भाषा सच्चे अर्थों में हल्की होनी शुरू होती है। सर्वनामों का प्रयोग यहाँ केंद्रीय हो जाता है, क्योंकि सर्वनाम अपने रूप में पूरी तरह से तद्भव है। हिंदी के सर्वनाम शब्दावली में एक भी प्रयोग तत्सम है। सर्वनामों के साथ क्रिया रूपों की तद्भवता और उनका द्वेषीपन बढ़ता है। गूंजे की आवाज में ऐसे अनेक विध प्रयोग मिलेंगे, हाथ तो उठेंगे टटोलेंगे पर पकड़ाई नहीं पावेंगे। पकड़ाई जैसे ठेठ देसी कृदंत रूप कवि को गली मोहल्लों और सामान्य मध्यवर्गीय घरों से जोड़ते हैं। सर्वनाम क्रिया कृदंत पदों के बीच नाम शब्दावली अब कम ध्यान खींचती है। सर्वनाम या तो दर्शन के रहस्य की ओर ले जाते हैं या समाज के व्यापक यथार्थ की ओर। शीर्षक कविता क्योंकि मैं उसे जानता हूँ मैं उसे पद दार्शनिक छाया लिए जान पड़ेगा, पर संदर्भ वहाँ समाज में व्याप्त भुखमरी का है। काव्य अखबार के कालमों में वर्णित उस अनाम व्यक्ति से संबंध महसूस करता है जो पेट की आग में जल रहा है, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ जिसने पेड़ के पत्ते खाए हैं और जो उसकी जड़ की लकड़ी भी खा सकता है, क्योंकि उसे जीवन की प्यास है, क्योंकि वह मुझे प्यारा है। इसलिए मैं पेड़ की जड़ को या लकड़ी को अनदेखा नहीं करता, बल्कि पत्ती को प्यार भी करता हूँ और करूँगा। समाज के जीवन के लिए व्यापक सहानुभूति और करुणा की भावना आज्ञेय के उत्तर काव्य में गहरी होती है, जो पूर्व आज्ञेय के उपन्यासों में विशेषतः शेखर एक जीवनी तथा कहानियों में सक्रिय थी। रचना के क्षेत्र में उत्तर आज्ञेय मुख्यतः कवि है या फिर विचार। इस दृष्टि से यहाँ उनकी कविता के सीमांत फैले हैं। थोड़े से सर्वनामों के प्रयोग में उन्होंने कई माध्यमों के व्यापक अनुभव को समेटना चाहा है। मैं और तुम का संबंध तो कविता में पुराना है, मैं और वह का परिचय इधर प्रगाढ़ हुआ है। इसके लिए परिवेश अब कवि का ध्यान अधिक खींचता है। आज़ादी की स्थिति का पहली बार सर्वेक्षण अज्ञेय द्वारा किया जाता है। आज़ादी की 20 बरस, जब भारतीय संविधान देश में स्वीकार किया था तो कवि ने लिखा था, एंड्रोट कामा, आज हम नए युग के स्वप्न को या नई आलोक मंजुषा समर्पित कर रहे हैं, नेटवर्क कहाँ पर। अब एक पीढ़ी का समय पूरा होने पर कवि अपनी चारों ओर देखता है कि एक पारस्परिक दोषारोपण का स्वर्ग आ रहा हुआ है। आज़ादी को देश से और देश को आज़ादी से शिकायत ही शिकायत है। एक अगंभीर मुद्रा में कवि सारी स्थिति का जायजा लेता है और यह मुद्रा ही जैसे इस प्रसंग में उसका वक्तव्य है। 26 जनवरी वाली कविता की निष्ठा यहाँ एक विद्रूप में बदल गई है, जो देश की इस नई अप्रिय मानसिकता का संदेश देती है। इन बदलते मानवीय और सामाजिक रिश्तों के पीछे किसी सीमा तक अज्ञेय की पत्रकारिता की भूमिका हो सकती है। पत्रकारिता में से कविता बनाना निश्चय कठिन काम है, क्योंकि इस प्रक्रिया में खतरा दूसरी दिशा से आक्रांत होने का बराबर बना रहता है। संचार माध्यमों की चुनौती साहित्य और कलाओं के लिए आज बेतहाशा बड़ी है, और इस रचना संकट को झेल ले जाना किसी भी रचनाकार के संवेदनात्मक स्वास्थ्य के लिए अच्छा लक्षण है। दिनमान, साप्ताहिक और नवभारत टाइम्स दैनिक की समाचार पत्रकारिता से संबंध रहने की अवधि में अज्ञेय की कविता पर जो दबाव पड़े, उनकी पड़ताल एक स्वतंत्र अध्ययन का विषय हो सकता है। यहाँ केवल इस परिवर्तन को लक्षित करना काम में है, इस संकेत के साथ कि गद्य के लय से कविता बनाने का जो प्रयोग अज्ञेय ने आरंभ किया था, वह इस दौर में पत्रकारिता के संस्पर्श से और प्रभावी हुआ है। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, मैं गूंजे की आवाज़ खंड की कविताएं देश की वर्तमान परिस्थिति से जुड़ी हुई हैं। आज़ादी के 20 बरस के अतिरिक्त अहम राष्ट्र संगमने जनानाम, क्योंकि मैं जनपद राजपथ, केले का पेड़, देश की कहानी, दादी की जबानी जैसी कविताएं तीखे व्यंग की मुद्रा और मुहावरे में चलती हैं, जो अज्ञेय के यहाँ आलोचना और अस्वीकृति का सबसे कठोर रूप है और उनके रचना विधान में बाद में विकसित हुआ है। इन कविताओं का मिजाज पूरी तरह देसी है। व्यंग और सहानुभूति की मिलावट में केले का पेड़ इस वर्ग के सबसे सशक्त रचना। कविता व्यंग में आरंभ होती है और सहानुभूति में पूरी। एक पंजाबी बुझारत या पहेली के लोक आधार से प्रेरणा लेकर कविता अपने संदर्भ में जमकर खड़ी हुई है, अपने ही अप्रस्तुत केले का पेड़ के प्रतिरोध में। कविता अंत में प्रस्तुत भारतवासी को सीधे संबोधित करती है। ओ केले के पेड़, क्यों नहीं भगवान ने तुझे रीढ़ दी कि कभी तो तू अपने भी काम आता, चाहे तुझे कोई न भी खाता, न सेठ न सन्यासी न डांगर पशु, चाहे तुझे बांध कर तुझ पर न भी बसाता, पर असमय मृत आशा शिशु, तू एक बार तन कर खड़ा तो होता मेरे लुज लुज भारतवासी। पूरी कविता में समूचे देश का इतिहास और उसकी मानसिकता पहले धीमे से और फिर तीव्र स्वर में उठती है। एक ऐसा देश जिसका फल बराबर देशी विदेशी राजाओं ने ही खाया है, यह निरा संयोग नहीं कि अप्रस्तुत केले का पेड़ भारतीय व्रत त्यौहार और उत्सव में मांगल्य का सूचक रहता है और इस मारे में भारतवासी के लिए सच्चा प्रतीक है, जिसकी उपयोगिता और निरीयता दोनों में के संदर्भ में है। जैसा संकेत किया गया, अब प्रेम और प्रार्थना की कविता का एक स्वर एक दूसरे के निकट आ गया है। यह आकस्मिक नहीं कि दोनों प्रकार की कविताओं को एक खंड में संकलित किया गया है। प्रार्थना का एक प्रकार और दोनों जगह एक गहरी करुणा का भाव अंतर्व्याप्त है। तत्सम की उदात्तता तद्भव की बराबरी और देसी की आत्मीयता में बदल गई। कहीं राह चलते चलते चुक जाएगा दिन, सहसा झुक जाएगी सांझ घनेरी में, वाक्य भंग के जरिए दिन के चुकने को सरांकित किया गया है। यद्यपि प्रेम व्यापार बहुत कुछ अपनी जगह चलते रहे, मैत्री वेद्य प्यार बहुत कुछ इसी मन स्थिति को जारी रखते हैं। देहरी पर जिस मंदिर में मैं गया नहीं, और प्रार्थना का एक प्रकार में प्रार्थना प्यार की तरह ही अधूरी है, यहाँ आकर प्रेम की कविता जैसे प्रार्थना का एक प्रकार बन गई। सागर मुद्रा में अकेक पुराना काव्य संस्कार एक बार फिर प्रबल होता है। यहाँ प्रकृति और प्यार की कविताएं हैं, कवि कर्म की समीक्षा है और परम तत्व का आकर्षण। यह अज्ञेय की पुरानी और प्रिय काव्य वस्तु है। प्रेम की कुछ उन्मुक्त कविताएं हैं, छातियों के बीच कन्हाई ने प्यार किया और प्रेमोपनिषद। विराट प्रकृति की सानिध्य में प्रेम अंतहीन और दुष्प्राप्त हो जाता है, उस एक रूप पर जिसे कभी पाया नहीं, जो कभी हाथ आया नहीं। प्यार और प्रकृति का यह मिला जुला रूप सागर मुद्रा दो में उभरता है। सागर की लहरों के बीच से वह बाहें बढ़ाए हुए मेरी ओर दौड़ती हुई आती हुई पुकारती हुई बोली, तुम सागर क्यों नहीं हो। और सागर की विशेषता है कि वह निर्बंध मुक्त रहता है, मुक्त करता है। जो कवि की दृष्टि में प्यार का मानक है, वह बाधता नहीं विस्तार देता है, यही सागर मुद्रा है। सागर मुद्रा में प्रकृति और प्रेम का जो उच्छलित रूप है, वह मानवीय जीवशा का ही प्रतिरूप है। जिसे कवि निराला ने कहा था, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। वसंत और बादल निराला के यहाँ जीवन प्रक्रिया के सबसे बड़े प्रतीक हैं। सागर अज्ञेय के यहाँ यह सागर अपने विराटता के बावजूद मनुष्य के प्रेम व्यापार में शेष प्रकृति के साथ साझेदार होता है, मनुष्य कचरा छोड़ता है। इसे बार बार सागर धोता है, आंधी माजती है, लहरें लीपती हैं, सूरज सुखाता है, समीर और संवार कर कहीं बह जाता है और फिर सागर रह जाता है। विराट और साधारण का यह मेल अज्ञेय के उत्तर काव्य में कभी कभी एक नए प्रकार के भक्ति पदों की रचना करता है, जहाँ निष्ठा से अधिक संशय और व्यंग है। भले आए की रचना ऐसी ही है, राम जी भले आए, ऐसे ही आंधी की ओट में चले आए बिना बुलाए। आए पधारो सिर आँखों पर वंदना सकारो, ऐसे ही एक दिन डोलता हुआ आ धमकूंगा मैं तुम्हारे दरबार में, औचक क्या ले सकोगे अपनी करुणा के पसार में। पद परंपरा होने के कारण तद्भवता देसी पनिया बोली पानी में कुछ अधिक घोषित है। पधारो वंदना सकारो डोलता हुआ पसार में, जैसे खाटी प्रयोग उसे प्रमाणित करते हैं, फर्क मन स्थिति में ऐसे को उदार जग माही। तुलसी आजू हो एक एक करें टरी हों सूरदास, और तुम सम कौन गरीब निवास भारतेंदु, अशरण शरण राम काम के छविधाम। निराला के बाद औचक क्या ले सकोगे अपनी करुणा के पसार में, जैसे पंक्तियों में एक भिन्न स्वर उठता है, जो आस्था अनास्था के बीच बराबर उमड़ता घुमड़ता रहता है। तौर कर विज्ञान के युग में कवि भक्ति का यह नया संस्करण है। विराट और साधारण का मेल परम तत्व की भांति कवि अपनी रचना प्रक्रिया में भी दिखाता है। सागर मुद्रा 6 इसी का आख्यान है। सागर की विराटता के सामने है साधारण वर्ण तुलसी की तीखी गंध, ताजे लिपि आंगन के गोयठों पर देर तक गरमाए गए दूध की धुली बांस, जेठ की गोदली की घुटन में कोयल की कूक। इस आमने सामने की टकराहट में रचना का उत्सव, यह टकराहट न होती तो दोनों पक्ष दो अलग अलग प्रतीत अतीत के प्रति सम्मोहन भाव चित्र होकर रह जाते। अज्ञेय ने पहले भी यह प्रक्रिया अपनाई है, पर अधिकतर शब्द समूह के स्तर पर। अभी अभिम विधान के व्यापक स्तर पर चलती है और कवि कर्म की अंतरंग झांकी दिखाती है। परम तत्व और कवि की रचना प्रक्रिया यह अज्ञेय के यहाँ समान ढंग से बने हैं। यह अवश्य है कि एक जगह इस बनावट में संशय मुखर है, दूसरी जगह आश्वस्त। इस क्रम में सबसे आकर्षक है स्वयं जीवन प्रक्रिया, जो रचना कर्म और परम तत्व की बनावट को समझने के लिए प्रस्तुत का काम करती है। प्यार और प्रकृति का मिला जुला रूप सागर मुद्रा के अंतिम खंड की कविताओं में भी दिखता है, जहाँ देश दर्शन का पक्ष विशेष रूप से आलोकित हुआ है। देलोस से एक नाव के विषय में कवि ने जो वृत्त आरंभिक भूमिका में बताया है, वह हरिप्रसाद द्विवेदी के प्रख्यात उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा की भूमिका की तरह स्वयं रचना का एक अंग हो सकता है या कि अलग से लेखक की वक्तव्य भी माना जा सकता है। दोनों रूपों में वह इस कविता श्रृंखला को समझने में सहायक है। प्रेम और मानवीय शरीर सौंदर्य के समतुल्य उपासना के देश ग्रीस में कवि ने प्रकृति वैभव को भी जोड़ा है। तीनों का मेल कस्तालिया का झरना में द्रष्टव्य है, जो अपोलो और कला देवताओं का तीर्थ जैसा है। चिनारों की ओट से सुरसुराता सरकता झरने का पानी, अरे जा चुप नहीं रहा जाता तो चाहे जिससे कह दे जा सारी कहानी। पतझर ने कब की ढंक दी है धरा गोंद सी, वह ढाल जहां हमने की थी मनमानी। प्रेम शरीर सौंदर्य और प्रकृति का संगम यानी यूनानी कला देवताओं का तीर्थ है तो यहाँ उचित है। सागर मुद्रा जैसा संकेत किया गया अज्ञेय की उत्तर काव्य की सामान्य धारा से कुछ अलग पड़ती है। परवर्ती संकलनों की कविताएं फिर पिछली धारा से जुड़ जाती है। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ कि लक्षणा उस्ताद बनकर चली गई है। सन्नाटे की चादर फिराक में यादों की चादर की याद दिला सकती है। पर उर्दू शेर की सीमा और गजल के मुक्तक संश्लेष परक विधान के अनुरूप फिराक के यहाँ चादर का सांकेतिक बिंब भर है। हालांकि स्वयं उर्दू के अपने साफगोई से यह बिंब विधान एकदम फर्क है, जबकि अज्ञेय ने इस बिंब की बनावट को एक और सूक्ष्मतर बिंब की रचना के लिए प्रस्तुत किया है। सन्नाटे को बुनने में कवि बताता है, हाथ मेरा काम करता है, नक्शा किसी और का उभरता है। और नक्शा पूरा होने पर जब बनाने वाले कवि को बताया जाता है कि कविता तो यह रखी है, तो कवि अपने उस सखी के लिए दूसरा सन्नाटा बुनता है। यूं यह सच्चे अर्थ में कविता की रचना प्रक्रिया की कविता है। सन्नाटा बुनते बुनते अंत में फिर कवि पाता है, मैं सन्नाटे का छंद हूँ। इस बिंदु पर अज्ञेय की उत्तर काव्य यात्रा संपन्न होती है। आधुनिक समीक्षा पदावली में प्रचलित बनावट पुनावट जैसे प्रयोग यहाँ एक नई सार्थकता पाते हैं। एकदम सामान्य साधारण जीवन से ली गई लक्षणा आगे और विकसित होती है नाच में। कविता यहाँ भी प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों स्तरों पर गतिशील होती है। उल्लेखनीय यह भी है कि कवि की रचना प्रक्रिया में चलने वाला देसीपन के लिए के प्रति रुझान यहाँ जैसे शीर्ष बिंदु पर पहुँच जाता है। नाच ध्यान देने की बात है, पूरे तौर पर तद्भर और देशी शब्दों से बनी है, उसमें तत्सम प्रयोग एक भी नहीं। यह दावा अज्ञेय की या अन्य कवियों की ही किन्हीं और कविताओं के लिए किया जा सकता है, नहीं कह सकता। हिंदी भाषा की अपनी शक्तिमत्ता का यहाँ बेजोड़ साक्ष्य मिलता है। एकदम सामान्य साधारण शब्दों से बनी यह कविता एक और नाच के उत्सव उल्लास के पीछे अंतर्निहित प्रवणा को खोलती है और फिर उसी से मिले जुले स्तर पर कलाकार मात्र की वेदना के भोग को उजागर करती है। रचना की ऐसी संश्लिष्ट बनावट छायावादी काव्य विशेषतः प्रसाद के साथ आधुनिक हिंदी कविता में आती है। कारण कुसुम तथा झरना में संकलित प्रथम प्रभात एक तरह से इस प्रक्रिया का आरंभ स्थल कहा जा सकता है। इस कविता में पहली बार बिना किसी श्लिष्ट शब्दावली के प्रयोग के अर्थ के कई मिले जुले स्तर एक साथ सक्रिय हैं। एक स्तर पर यहाँ प्रातःकालीन प्रकृति का वर्णन है, एक दूसरे स्तर पर प्रथम प्रणय का अंकन है और एक तीसरे स्तर पर परम तत्व से साक्षात्कार का रूप है। फिर ये स्तर परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया में एक बृहत्तर अर्थ की सृष्टि करते हैं और स्वयं अपनी सत्ता उसी में विलीन कर देते हैं। आधुनिक समीक्षा में इस प्रक्रिया को अर्थ का द्वैत कहा गया है। प्रथम प्रभात नामक इस कविता और इसकी नई अर्थ संभावना के अगले विकास क्रम में दूर तक आसानी से देखा जा सकता है कि यह नया विधान अधिकतर तत्सम शब्दावली पर आधारित हुआ है, जहाँ शब्द की मिलती जुलती कई अर्थ छायाएं अनायास उभरती हैं। नाच इस विकास प्रक्रिया के निष्पत्ति कही जाएगी, जहाँ तत्समों को छोड़कर अर्थ संभावना तद्भव और देशी शब्दावली में हुई है। छायावाद से नई कविता तक का यह स्वाभाविक क्रम विकास है। एक सिरे पर प्रसाद, दूसरे सिरे पर अज्ञेय। येट्स ने कुछ आध्यात्मिक मुद्रा में कहा कि नर्तक को नृत्य नहीं समझा जा सकता। अज्ञेय ने रूपक को उल्टे बिंब और रंग में रचा। देशी की एक और छटा, मैंने पूछा क्या कर रही हो, मैं देखी जा सकती। धीरे धीरे शब्द प्रयोग के साथ फिर प्रयोग भंगिमा में देशीपन उभरता है। यह कविता पति पत्नी की साथ सीधी सारी गृहस्थी के परिदृश्य और उसके दुख सुख को व्यंजित करती है और संश्लिष्ट स्तर पर नाच के प्रतिरूप के तौर पर चलती है। नाच में कलाकार की वेदना का भोग है मैंने पूछा, क्या कर रही हो? मैं वैसा ही वेदना का भोग गृहस्थी चलाने में है। मानवीय रचनाशीलता के यह कई स्तर हैं। कलाकार की रचनाशीलता का विजात्य और गृहस्थियों की रचनाशीलता का निपट देसीपन एक दूसरे के आमने सामने आकर अपने अपने वैशिष्ट को खोलते हैं। गृहस्थी की शब्द भंगिमा का यहाँ अपना वैभव है। सामान्य जीवन में रसवत्ता और सार्थकता का संधान नई कवि ने अपने रचना कर्म का एक विशिष्ट दायित्व माना है। आगे की कविताओं का यह युग्म इस दायित्व का रचनात्मक स्तर पर पूरा पूरा निर्वाह करता है। जो कुछ प्रदर्शित है उसके पीछे क्या क्या गुजरा है इसकी प्रायः अनदेखी होती है। नाच और मैंने पूछा क्या कर रही हो में असाधारण के पीछे इस साधारण को रेखांकित किया गया है, जिस साधारण की अपने अलग तनाव है। रस्सी पर नाच दिखाने वाले की पीड़ा है कि लोग उसके नाच को देखते हैं उसे नहीं। न मुझे देखते हैं जो नाचता है, न रस्सी को जिस पर मैं नाचता हूँ। न खम्भों को जिस पर रस्सी तनी है, न रोशनी को जिसमें नाच दिखता है, लोग सिर्फ नाच देखते हैं। चौके में रसोई बनाने वाले गृहस्थियों की भी यही पीड़ा है। मैं जो परोसूंगी, जिनके आगे परोसूंगी, उन्हें क्या पता है कि मैंने अपने साथ क्या किया है। पाली कविता में तत्सम प्रयोग एक भी नहीं था, कविता का मुख्य भाग में यहाँ भी नहीं है। गौण पंक्तियों में दो एक प्रयोग व्यंग की मुद्रा में आ गए हैं। इस देसीपन में विश्वास के साथ इस रचनाकार ने अपने पिछले तथाकथित पाश्चात्य प्रभाव का मार्जन कर लिया हो। पूर्व में अज्ञे में यदि व्यक्तित्व और अस्मिता की तलाश है तो उत्तर में घर की। यह भी एक प्रकार का अंतर है तत्सम और देसी के बीच। आंगन के पार द्वार तक भवन की महिमा थी। आंगन के पार द्वार खुले, द्वार के पार आंगन, भवन की ओर छोर सभी मिले, उन्हें में कहीं खो गया भवन, आंगन का पार द्वार। अब घर चिंता के केंद्र में है। मेरा घर दो दरवाजों को जोड़ता एक मेरा घेरा है। मेरा घर दो दरवाजों के बीच है, जिसमें किधर से भी झांको, तुम दरवाजे से बाहर रहे होगे, तुम्हें पार का दृश्य दिख जाएगा, घर नहीं दिखेगा। अथवा नहीं, यूलिसीज, न तुम्हें कभी मिलेगी इथाका, न मुझे कभी द्वारका। वापसी में यों भी कोई नगर नहीं मिलते, प्रवासी लौटते तो हैं पर उनकी घर वापसी नहीं होती, जहाँ वापसी होती है वहाँ उनके घर नहीं होते, उन्हें कोई नहीं पहचानता। नहीं, यूलिसीज, क्योंकि घर बनाना बनाए रखने का जरूरी साधन है, क्योंकि घर पहचान बनाए रखने का जरूरी साधन है। काशी में मत्सल निधि द्वारा आयोजित भारतीय घर परिसंवाद में रचनाकार की बुनियादी चिंता देखी जा सकती है। व्यक्तित्व और परिवेश की परस्पर पूरकता का चक्र यहाँ पूरा घूम जाता है, कवि की रचनाशीलता को समृद्धतर बनाता। इस स्थिति में बहुत तरह की अवधारणाओं को भेदता हुआ कवि यथार्थ तक पहुँचना चाहता है। अंतिम संकलन ऐसा कोई घर आपने देखा है में रचनाकार का यह उद्यम जगह जगह तीव्र होता दिखता है। अब वह पाता है चिड़िया को अपने भी नाम दिए थे, सब झूठे पड़ गए। स्वयं अब बोली चिड़िया, नहीं कहा मुझे मैंने। वह यह भी समझा कि मैं जो मानता हूँ कि अपने को खूब जानता हूँ, पाता हूँ अपनी ही पहचान कभी कभी। इस क्रम में अहंकार को गलाने की प्रक्रिया गलाई शीर्षक छोटी सी कविता में बखूबी व्यक्त हुई है। इस छोटे और तीखे विधान के साथ समझ में नहीं आता कि उत्तर अज्ञेय में या तो कविता पूरी तरह बनती है या फिर बिल्कुल नहीं बनती, बीच की कोई स्थिति नहीं है। अंतिम संकलन की अंतिम कविता है छंद, इसी विधान में जिसका अभी उल्लेख किया गया है। मैं सभी ओर से खुला हूँ, वंशा वंशा अपने में बंद हूँ, शब्द में मेरी समाई नहीं होगी, मैं सन्नाटे का छंद हूँ। पूर्व अज्ञेय में मौन के अनेक संदर्भ हैं, रचनात्मक और विचार पर साहित्य दोनों। इंद्रधनुष रौदे हुए ये में कवि ने कहा था, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। अब मौन अधिक तीखे और चित्रात्मक ध्वनि समूह सन्नाटे में बदल गया है। इस सन्नाटे को सुनने का उपक्रम कई संकलन पहले अज्ञेय ने शुरू किया था। पहले मैं सन्नाटा बनता हूँ, सन्नाटे के जोड़ का यहाँ दूसरा शब्द है समाई, दोनों ठेठ देसी शब्द के साथ समाई और छंद के साथ मिलकर सन्नाटा एक संपूर्ण अनुभूति क्रम को संभव करते हैं, जो अपनी प्रक्रिया में अंतहीन हो जाता है। समाई में आत्मतोष की संकेंद्रता है जो कभी को काम में नहीं, सन्नाटे में है विस्तार जो चाहिए। इन कई तरह के द्वंद्व प्रक्रियाओं में से फिर अर्थ का द्वैत होता है जो कभी कर्म का चरम लक्ष्य है। इस संक्षिप्त कविता के अंतिम द्वंद्व सन्नाटे का छंद में छंद की कई उपछायाएँ उभर रही हैं। छंद से अभिप्राय एक ओर लय में है तो दूसरी ओर छाने की क्रिया से और तीसरी ओर छलने से। वे सभी अर्थ छायाएँ संश्लिष्ट होकर छंद के अर्थ को वन की ही तरह विस्तृत और रहस्यपूर्ण बनाती हैं। वे सन्नाटे और छंद की ध्वनि की आपस में एक दूसरे से टकराहट है। इन सभी तत्वों के बीच से कवि जैसे अपनी रचना का परिचय दे रहा हो। इनमें से कुछ का संकेत अपनी एक पिछली कविता में वह दे चुका है, जहाँ छलने की व्याख्या विशेष ध्यान देने योग्य है। मैं कवि हूँ, मैं सच लिखता हूँ, लिख लिख कर सब झूठ करता जाता हूँ। तू काव्य, तू छलता है, पर हर पल में तू और विशद अभ्रांत अनूठा होता जाता है। बहुत कुछ ऐसे ही छल के लिए कवि ने अपने को सन्नाटे का छंद कहा है। पहले कवि अपने को महत्वपूर्ण मानता था, फिर क्रमशः कविता का महत्व बढ़ा और अब इस अंतिम दौर में दोनों एक हो गए। कवि स्वयं छंद बन गया और यह संयोग से कुछ अधिक है कि छंद के बाद भौतिक रूप में कवि की ओर से सन्नाटा छा जाता है, छंद की गूंज बढ़ जाती है। शायद यह गे की अंतिम कविता हो जिसे कवि ने अपने समाधि लेख के रूप में चुना हो।